السلام علیکم خواتین و حضرات، پیشتے اس کے سوالوں کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج 14 اگست ہے اور ہم سب یوم آزادی منا رہے ہیں، جس طرح سے بڑے الیبوریٹ طریقے پر اب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آزادی، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے اندر پاکستان کی محبت بے پناہ ہے، ہمارے اندر پاکستان کے لیے قربانی کا جذبہ بے پناہ ہے، ہم آزادی کے متوالے ہیں اور اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے میسج یہی ملتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ جس جذبے کا اظہار آج ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے، ہم عملی طور پر بھی اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے اسی طرح کام کریں۔ ہم دوسرے ممالک میں جا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جھوٹ نہ بولیں ڈیسک پر، امیگریشن ڈیسک پر، ہمارے رویے وہاں ایسے پروقار ہوں کہ دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہی کافی ہو کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں نے شاید یہاں یہ قصہ ایک بیان کیا تھا کہ میں ریسرچ پیپر لکھ رہا تھا اور میرے ریسرچ کا ٹاپک تھا آٹوموبائل انڈسٹری ان یورپ، اور اس سلسلے میں مجھے واکس ویگن کی ورکس پر کو وزٹ کرنا تھا، تو چیپ فلائٹس جو ملتی ہیں وہ ڈزلڈورف پر لینڈ کرتی تھی اس زمانے میں، چھوٹا سا شہر ہے ڈزلڈورف اور بہت ہی چھوٹا سا ایئرپورٹ، میں وہاں اترا تو ایک طرف روسٹرم ٹائپ ایک ڈیسک لگا ہوا تھا لیکن اس پر کوئی آفسر نہیں تھا، اس ڈیسک پر موٹا موٹا لکھا تھا امیگریشن، تو میں خود بخود وہاں چلا گیا، جا کے کھڑا ہوا، مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر ایک آفسر آ گیا، تو میں نے اسے اپنا پاسپورٹ دیا، اوبیسلی پاکستانی پاسپورٹ پکڑا، تو اس نے اسے دیکھا، تو خلاف معمول بڑی رواں انگلش میں، وہ جرمنی میں انگلش اتنی زیادہ بولی نہیں جاتی ہے، تو بڑی رواں انگلش میں مجھے کہتا ہے کہ ویئر اباؤٹ دس پاکستان از، تو میں نے اسے ایکسپلین کیا کہ اسی طرح سے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ ہے، اور کہا او یو مین انڈیا، تو جس طرح ہر شخص کی کچھ ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں، کچھ باتیں اس کو چپتی بڑی ہیں، تو یہ بات معلوم نہیں کیوں بہت زیادہ چپتی ہے کہ کوئی مجھے انڈین کہہ دے، وہاں وہ تمام ضبط اور تحمل میرا ختم ہو جاتا، तो मैं जरा सा आगे चमक कर बोला उससे कि नो आई एम पाकिस्तानी। दोबारा उसे एक्सप्लेन किया तो कहता कि यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ऑफिसर वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, वी वर एट वॉर विद इंडिया। तो एकदम से चौंक कर उसने सर उठाया और मुझे कहने लगा ओ यू मीन अयूब खान। मैं यस स्टैंप लगाई के साथ वेन एंजॉय यू आर ए ब्रेव नेशन। ये प्राइड था, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक नौजवान जो अपनी नौजवानी की उम्र में है उसका सीना किस तरह फूला होगा ये सुनकर कि जिस तरह से उसने एक्नॉलेज किया और जिस तरह उसने कहा कि यू आर अ ब्रेव नेशन। आई विश के ये हमारा वकार और इज्जत एक बार फिर हमें मिल जाए। अब वो मिलेगी एक ही सूरत में जब हमारे रवैये बैरून मुल्क बहुत पुरवकार होंगे और हम अपने अमाल के जरिए से अपनी हरकतों के जरिए से ये साबित कर देंगे कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो ना तो हमसे ये तो रखी जा सकती है कि हम कोई बेईमानी करेंगे, ना हमसे किसी कानून की किसी खिलाफ वर्जी की कोई तो रखी जा सकती है और ना ही हमसे किसी ऐसी हरकत की तो की जा सकती है जो वकार के मुनाफी हो। वक्त लग जाता है लेकिन आदमी अपनी रेपुटेशन को रीगेन कर जाता है। मैं अगर आप लोग बोर हुए हैं इस गुफ्तगू से मैं उसकी माफी चाहता हूं। एक सवाल किसी साहब ने किया है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि बदअमालियों और कबीरा गुनाहों के बायस दिल पर जो स्याहियां आ जाती हैं वो सिर्फ इसमें ज़ात यानी अल्लाह के जिक्र से खत्म होती हैं। आपके ख्याल में अल्लाह का जिक्र करने का बेहतरीन तरीका क्या है? ये जो बुजुर्ग फरमाते हैं कि गुनाहों की स्याही दिल से मिटाने के लिए जिक्र इलाही किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, उससे मुराद सिर्फ इसमें जात का विद नहीं है बल्कि अल्लाह ताला को हर अंदाज में पुकारना, उसको याद करना। अक्सर बेशतर यहां बात होती है कि हम बसा औकात जो किसी बुजुर्ग ने बात कही है उसके अल्फाज में उलझे रहते हैं, उसके अल्फाज को हम उसके लफ्जी मायनों में लेते हैं, जबकि बात हमारी समझ में सिर्फ उस वक्त आएगी जब हम उसके मफहूम पर जाएंगे, जो मैसेज उस उन लफ्जों में छुपा है उस मैसेज को हम रीड करेंगे। बात यह है कि दिलों की स्याही सिर्फ उस सूरत में दूर होती है जब हम नेकी की तरफ चले जाते हैं, जब हमारे अमाल नेक होते हैं। और नेक अमाल होंगे खौफ खुदा के तहत बल्कि इससे भी बढ़कर इश्क इलाही के जरिए से, कि जिस तरह से एक प्यार करने वाला इस बात से खौफजदा रहता है, हर वक्त उसको धड़का लगा रहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, वो उसकी छोटी से छोटी बात मानता है, उसकी छोटी से छोटी फरमाइश पूरी कर देता है। तो जब हम रब से इश्क करते हैं, रब से इस तरह प्यार करते हैं, तो फिर हमारे अमाल उसके हुक्म के मुताबिक होते चले जाते हैं। और जब हम नेकी की तरफ चले जाते हैं तो दिलों की स्याही मिट जाती है और वहां अल्लाह का नूर भरने लगता है, वहां अल्लाह रहने लगता है। जिक्रे इलाही बमायनी अल्लाह को हर वक्त याद करते रहने से है। उसका मतलब ये नहीं कि इसमें जात का स्वरूप वर्द किया जाए, अल्लाह को हर वक्त याद किया जाए, उसको याद रखा जाए हर वक्त। उससे प्यार किया जाए तो हमारे अमाल दुरुस्त होंगे और उसके नतीजे में दिल की स्याही मिट जाएगी। अलबत्ता ये जो सवाल है आपका कि अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए, इसमें आजम का जिक्र कैसे किया जाए, बहुत आसान सा तरीका है। हर नमाज के बाद बैठ जाइए और एक तस्बीह अल्लाह 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 ऐसे कर लीजिए, जिक्र हो गया। लेकिन बात वही है कि ये जिक्र अगर जुबान से जारी है तो फिर आपकी तमाम हरकतें, आपके तमाम अमाल शाह साहब जैसे हो जाएंगे कि वो नामा अमाल नेकियों से खाली और गुनाहों की स्याही से भरा हुआ। लेकिन अगर अल्लाह को पुकारा इसलिए कि मुझे उससे प्यार है, मैं उसका नाम लेके खुश होता हूं, उसके अहकामात पर अमल किया, ना सिर्फ ये कि स्याही धुलेगी बल्कि दिल में रब आन बसेगा, तो अगला सवाल ये है कि क्या एक सालिक वली अल्लाह का मुरीद मजजूब हो सकता है? देखिए, मुरीद जब तक अपने मुर्शिद के पास बैठा है तो कुछ कंट्रोल में रहता है। मैं कुछ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए उसका जहन भटकता रहता है, उस पर उसके मुर्शिद का कोई इख्तियार नहीं है। वो मुझ जैसा बंदा अगर अपने मुर्शिद साहब के पास जा बैठे तो बैठा तो हूं मैं अपने मुर्शिद साहब के पास, लेकिन सोच रहा हूं कि कल सुबह जिस आदमी को मैंने टाइम दिया है उसने 10 लाख रुपया लाना है रिश्वत का, तो इससे मैं फला फला जगह जाके ऐश करूंगा। मुर्शिद का कंट्रोल तो नहीं है मेरी सोचों पर, तो इसलिए मैंने लफ्ज कुछ इस्तेमाल किया। मुर्शिद का क्या कंट्रोल है, ये सब कहानियां और बातें के साथ, वो मुर्शिद ही क्या जो मरीज के ख्यालात को पढ़ के उनको दुरुस्त न कर दे। जो आजादी इंसान को रब ने दी है, मुर्शिद उसको सल्ब कैसे करे? ये आजादी तो रब ने दी है कि इंसान जो चाहे सोचे, जो चाहे फैसला कर ले, जो चाहे अमल कर ले, तो मुर्शिद कैसे उसे सल्ब कर सकता है? मुर्शिद के पास बैठे हुए ये आलम है तो मुर्शिद से दूर इंसान चला गया तो अपनी हरकतों में भी आजाद हो गया, वहां सोच में आजाद था, यहां सोच और हरकतें दोनों में आजाद हो गया। तो अगर एक मुरीद अपने मुर्शिद साहब के पास से उठता है, किसी और अल्लाह वाले के पास जा बैठता है, वहां से वो सबक पढ़ता है, उसके नतीजे में उस पर हालत जज्ब तारी हो जाती है, तो उसमें मुर्शिद का क्या कसूर है? तो ये डिपेंड करता है असल में सीखने वाले से। जैसे मैंने पिछले किसी लेक्चर में अर्ज किया था कि इल्म का लेना तो बिल्कुल ऐसा है कि फल का एक दरख्त है, उस पर फल पक गए हैं। उसे तो, उस फल को तो जमीन पर गिरना ही गिरना है। ये उसके करीब से गुजरने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उस फल को गिरते हुए देखे और नीचे झोली फैला दे तो वो फल जमीन पर गिरकर जाया होने के बजाय उसकी झोली में आ जाएगा, उसको खा सकेगा वो। तो इल्म को वसूल करना बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेहतरीन मुर्शिद पकड़ ले बंदा, लेकिन करे अपनी मर्जी और अपनी मर्जी करने के बाद वो कुछ अरसे में ही कह दे कि साहब मुझे तो कुछ भी ना मिला, यहां मैं 20 साल से बैठ रहा हूं इस वली अल्लाह के पास और आज भी खाली हूं वैसे का वैसा, तो उसमें उस गरीब का क्या कसूर है? हर चीज के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती हैं। जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व ना करें तो मामला बन ही नहीं सकेगा कभी। तो ये मुर्शिद पर डिपेंड नहीं करता कि उसका मुरीद सालिक होगा या मजजूब होगा, ये खुद मुरीद पर डिपेंड करता है। आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों की तवक्कुआत के खिलाफ जवाब दे रहा हूं, लेकिन हकीकत और सच यही है। यह हक अल्लाह ने हमें दिया है बहसियत इंसान, बहसियत अपने खलीफा के। हमें ये तीन आजादियां उसने अता की हुई हैं, सोच की आजादी, फैसले की आजादी और अमल की आजादी। अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे आज चोरी करना है, कोई फरिश्ता नहीं आएगा मुझे रोकने के लिए कि ये ना सोचो ये गुनाह है। मैं आजाद हूं, मैं फैसला कर लूं कि मुझे ये चीज अभी चोरी करनी है यहीं से, मैंने फैसला कर लिया चोरी करने का, कोई फरिश्ता नहीं आएगा मुझे मना करने, और मैं उसको चोरी कर लूं मेरे हाथ को रोकने कोई फरिश्ता नहीं आएगा, लेकिन इसकी सजा और जजा रब की यहां है। और यकीन कीजिए कि इसकी सजा और जजा इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, दोनों जगहों पर होगी। लेकिन रोकेगा कोई नहीं, इसलिए कि यह आजादी दी जा चुकी हमें बतौर रब के खलीफा तो अर्द होने के नतीजे में। तो जिस जो आजादी रब ने अता की है, मुर्शिद उसको कैसे सलब आपकी कर लेगा? आप आजाद हैं, आप सीखने आए हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है कि आप ये फैसला करें कि मुझे सीखना है या मुझे सिर्फ टाइम को वाइल अवे कर देना है। तो मुरीद खुद अपने आप को दुरुस्त करे कि मुझे क्या करना है, तो बात बनती है। देखिए, मुर्शिद अगर साहिब इल्म है, एक बड़े मकाम पर फाइज है, कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके मुरीदों में से मजजूब हो जाए। जो साहिब मकाम वली अल्लाह हैं, वो तो ये भी कभी नहीं चाहते कि उसका मुरीद तारकु दुनिया हो जाए, तरके दुनिया कर दे। वो तो इस पर इंसिस्ट करते हैं कि सुन्नत यही है कि दुनियादारों से ज्यादा दुनिया निभाई जाए और दीनदारों से ज्यादा दीन फॉलो किया जाए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। تو وہ مجذوبیت کی طرف کبھی نہیں گائیڈ کرے گا بلکہ روکے گا جہاں سے شک ہو جائے کہ میرا مریض مجذوب ہونے لگا ہے، وہاں شاید وہ اپنا تصرف بھی استعمال کر لے اس کو روکنے کے لیے۔ کوئی سالک نہیں چاہے گا اس کے یہاں اس کے مریضوں میں سے کوئی مجذوب ہو۔ اگلا سوال ان کا وہی ہے جو انسان نے سوال کیا، کیا مجذوبین بھی صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں؟ اصل میں اولیاء کرام میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو سالک ہوتے ہیں کلیتن، ایک قسم وہ ہے جو سالک بھی ہے مجذوب بھی ہے، جیسے جناب حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سالک بھی تھے مجذوب بھی تھے اور کئی کئی گھنٹے حالت جذب میں رہتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر سالک ہوتے تھے۔ جناب سرکار سید جلال الدین علی احمد صابر صاحب سالک تھے لیکن جلال اتنا تھا کہ کوئی قریب نہیں پھٹک پاتا تھا، تنہا صرف ایک ہی شخص ان کے قریب جا سکا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ آئے تو تھے ترکی سے، جناب شمس ترک پانی پتی۔ پانی پتی اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ پانی پت میں ان کا مزار ہے، اور شمس ان کا اصل نام تھا، ترک چونکہ ترکی سے تعلق تھا ان کا، اس نسبت سے انہیں شمس ترک کہا گیا۔ بعد میں جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو دفن ہوئے پانی پت میں، اس نسبت سے اب ان کا پورا نام شمس ترک پانی پتی لیا جاتا ہے۔ یہ بابا صاحب کے پاس پاکپتن شریف میں تشریف لائے تھے، ترکی میں شہرت سنی تھی بابا صاحب کی، اور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کیا کہ مجھے بیعت کرنا ہے آپ کے ہاتھ پہ، دست مبارک پہ۔ تو بابا صاحب نے نظر دوڑائی اور نظر ڈالنے کے بعد فرمایا کہ تمہارا حصہ سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ان کی تو شہرت یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے، کوئی آدمی ان کے قریب نہیں جا پاتا۔ فرمایا کہ اس طرح سے جانا کہ وہ بڑھ کے ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو تم ان کی بیک سائڈ سے جانا، تو ذرا فاصلے پہ جب ہوگے تو دل میں یہ کہہ دینا کہ مجھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھیجا ہے، تو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یوں شمس ترک پانی پتی صاحب کلیر شریف چلے گئے، اور دور سے دیکھا کہ رخ کدھر ہے سرکار کا، تو آپ کی بیک کی طرف سے گئے، تو تھوڑے فاصلے پر جب تھے تو آواز آئی کہ کون ہے، تو کہا کہ جی میں شمس ہوں اور مجھے بابا صاحب نے آپ کے خدمت میں بھیجا ہے۔ تو یوں ان کی رسائی ہو گئی، اس لیے کہ جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب تو ماموں بھی تھے، سگے ماموں سرکار کے، آپ کے مرشد بھی تھے، سسر بھی تھے، تو وہ ان رشتوں کا احترام اولیاء کرام بہت کرتے ہیں۔ یوں شمس ترک پانی پتی صاحب ان کے پاس رہنے لگے، ورنہ کوئی آیا نہیں پاس۔ کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو کلیتن مجذوب ہوتی ہیں۔ تو یہ جو صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں، یہ اصل میں نیم سالک نیم مجذوب کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ لیکن جو کلیتن مجذوب ہو جائیں وہ نہیں، پھر وہ تو ہوش و حواس سے آری ہو گئے۔ ان کا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مرشد کی روحانی کیفیات مریض پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ یقینی طور پر ہوتی ہیں, اور اس کے کئی ایک تجربات ہم نے بھی کیے. کئی بار ایسا موقع آیا, اگر آپ لوگوں کی طبیعت پر بار نہ گزرے تو میں ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں انہیں اپنے مرشد صاحب سے ملوا دوں. لے گیا میں, جیسے مجھے توقع تھی بڑے قریب ہو گئے مرشد صاحب کے. پھر کچھ عرصے کے بعد اتنے دور ہوئے کہ ان کا داخلہ مرشد صاحب نے بند کر دیا اپنے یہاں. مجھ سے بھی ملنے سے گئے وہ. تو ایک بار کوئی 2-4 سال کے بعد اچانک میرے آفس میں آ گئے اور مجھ سے بیٹھے گپ شپ کرتے رہے. تو ایک دم سے گھڑی دیکھی, کہنے کو ہو مجھے تو ایک بجے کھانے پر ایک صاحب نے بلایا ہوا تھا, وہاں جانا تھا, اب 3 بج گئے ہیں. تو شاہ صاحب اگر آپ مجھے وہاں ڈراپ کروا دیں تو ہارڈلی اینی پرابلم, گاڑی اور ڈرائیور لے جائیے آپ. کہنے لگے نہیں, آپ خود ڈراپ کر دیں راستے میں, میں آپ سے گپ شپ مارتا جاؤں گا کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ صاحب انتظار کر کے چلے گئے ہوں, تو میں واپس پھر آپ کے ساتھ آ جاؤں گا, آ جائیے. تو مجھے اچھرے کی ایک بلڈنگ میں وہ صاحب لے گئے, ملٹی اسٹوری بلڈنگ تھی. تو میں نے انہیں ڈراپ کیا, کہنے لگے آپ رکیے میرا انتظار کر لیجیے, میں اوپر جا کے دیکھاتا ہوں, 5th فلور پر ہیں, اگر تو وہ ہوئے تو میں آپ کو ونڈو میں سے ویو کر دوں گا, آپ چلے جائیے گا, ادروائز میں آ جاؤں گا, مجھے واپس ڈراپ کر دیں. فائن, کر لیجیے آپ. تو اس وقت تک مجھے اندر سے کچھ خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ مقصد اصل کچھ اور ہے. وہ صاحب گئے اور ونڈو سے مجھے اشارہ کیا کہ اوپر آ جائیں, گاڑی پارک کر دی, چلا گیا. تو یہ انتظار کر رہے تھے, کہنے لگے وہ ہیں, موجود ہیں, آئیے چلتے ہیں. تو کوریڈور میں سے گزرے ہم, تو ایک ونڈو کھلی تھی, اس میں سے کہنے لگے یہ ہیں. تو وہ ایک صاحب کالی چادر پوری اوڑھ کے زمین پر لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو کالی چادر پر نظر پڑی تو مجھے پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا. تو کچھ لوگوں میں ضد ہوتی ہے, تو جب وہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ یہ قصہ کیا چلنے لگا ہے, تو وہ جو میرے اندر کا ایک ضدی انسان ہے وہ برآمد ہوا کہ اب دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ. تو میں چلا گیا ان کے ساتھ, وہ صاحب اٹھ بیٹھے, انہوں نے تعارف کرایا میرا. تو انہوں نے کہا جی آپ, میں نے کڑھائی کا آرڈر دیا ہے تو کھانا کھائیے. تو چونکہ معاملہ میرے سامنے آ چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, تو میں نے کہا جی ضرور کھاؤں گا کھانا, حالانکہ دوپہر کو میں کھانا نہیں کھا تھا. کڑھائی آ گئی تو سڈنلی میں نے ریئلائز کیا کہ یہ صاحب کچھ پڑھ کے میرا ذہن اپنے قبضے میں کر رہے ہیں. یہ بڑی پرانی بات ہے, بہت پرانی بات, میرا خیال ہے شاید 32-33 سال پرانی بات. تو میں نے فوری طور پہ دل میں ایک چیز پڑھی اور مرشد صاحب کو آواز دی. تو ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل گئی مرشد صاحب کی, تو میں مطمئن ہو گیا کہ اب کیا بگاڑے گا کوئی میرا. انہوں نے کھانا کھلایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھ کے انہوں نے پھونکا اس پر, اب کرتے رہیے جو کرنا. تو مجھے غور سے دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے اندازہ کیا کہ اس پہ اثر نہیں ہوا. تو جب کھانا کھا لیا تو کہنے لگے چلیے آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں. تو یہ جو آئس کریم ہے ماڈرن وہ میں نہیں کھاتا, کیونکہ اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو جس کی ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی نہیں کھائیں گے دوبارہ. लेकिन वो उन्होंने पोल का मंगवाई और बाकायदा उसका कवर हटा के देखा वाइट कौन सी है, ये एक ट्रिक होता है वाइट चीज का। तो मैंने देखा कि वाइट उन्होंने मुझे दिए, अच्छा ठीक है एक छोड़ दो दे दीजिए अब क्या होगा। तो मैंने आइसक्रीम खा ली, फिर वो परेशान हुए कि इसको कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इनका फाइनल आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि अच्छा मैं शाह साहब आप कभी कभी पान खा लेते हैं, मैंने कहा जी जरूर खाता हूं, चलिए मैं पान खिलाता हूं, मैंने जरूर मंगवाइए आप। पान उन्होंने दिया, पान खिला के देखते रहे मुझे, कुछ नहीं हुआ। तो बिल आखिर मुझे कहने लगे अच्छा ऐसा कर लें शाह साहब आपके पास गाड़ी है, मैंने कहा जी, जरा मुझे मेरे डेरे तक तो छोड़ दीजिए, आ जाइए बिस्मिल्लाह ड्रॉप करता हूं। तो गाड़ी में तशरीफ रखे और उनकी बदकिस्मती के साथ वाली सीट पे मेरे बैठे, वहां मुर्शिद साहब बैठते थे हमेशा, उन्होंने अपनी मौत को आवाज दे दी। तो थोड़ा ही अभी गया तो मुझे कहने लगे कि कोई बेचैनी हो रही आप मुझे यहां ड्रॉप कर दे, मैं वापस ही जाऊंगा, उतर जाइए, चले गए। तो मैं ऑफिस आ गया 6 बजे के करीब, बैठे बैठे एक तो मेरे जिस्म में बेअंदाज दर्द शुरू हुआ और बड़ा तेज बुखार। तो मैंने सोचा चलो मुर्शिद साहब के पास चलते हैं, तो उनसे चाय पीऊंगा दर्द दूर हो जाएगी और बुखार भी उतर जाएगा। मुर्शिद साहब के पास आया तो देखा वो भी उसी कैफियत में मुब्तला है। तो एक नजर दौड़ाई तो पता चल गया कि वो मुझे कुछ नहीं हुआ था, यहां से मुर्शिद साहब की जो कैफियत है वो मेरी से मुंतकिल हो रही थी। तो मैंने कहा हजूर इस तरह बुखार हो गया बैठ बैठ कर जिसमें दर्द था, कहने मेरे अपने बहुत है। तो अच्छा ठहरो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं, मैं चाय पी ठीक हो गया। अगले दिन ऑफिस में मैं बैठा था तो यही साहब बड़े घबराए हुए आए, तो कहने लगे शाह साहब कल तो बड़ा ही अजीब गरीब किस्सा पेश आया। तो उन साहब का जिनके पास लेके गए थे मुझे, उन साहब का नाम लिया कि वो और हम 8-10 लोग आभारी में बैठे चाय पी रहे थे, तो एकदम से ये चीखने लग गया कि मेरी टांग गई, मैं मर रहा हूं, मुझे ले चलो अस्पताल ले चलो, बड़ी जोर जोर से चीख रहे थे। तो मैंने कहा जी एक सेकंड, तो उस वक्त शाम के 6 बजे हुए थे, तो जी जी एग्जैक्ट 6 बजे, ऐसे ठीक। तो कहने लगे उनको फिर एम्बुलेंस में ले जाया गया। तो अब क्या हाल है उनका, कह नहीं वो तकलीफ में है तो बुरी बात है, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, चलिए आप उनकी इयादत के लिए चले चलें। अब ये नया हरबा था तो जो ही मुझे अंदाजा हुआ कि ये नया हरबा इस्तेमाल होने लगा मेरे ऊपर, तो आज सर चलिए अभी चलते हैं। उनके डेरे पे चले गए तो इतनी दूर देर में बाथरूम से आवाज आई कि मुझे ले चलो वोमेन ले चलो। तो दो आदमी पकड़ के उन हजरत को लेकर आए, तो उनकी एक हवा एक टांग हवा में मुअल्लक थी और बड़ी बुरी तरह, जो ही उनकी मेरे ऊपर नजर पड़ी बड़ा शदीद गुस्सा था उनकी आंखों में। तो मैंने इनसे कहा कि बस आदत हो गई चलिए चलते हैं। वो किस्सा ये था कि इंसान ने चूंकि मुझे कब्जे में लेने की कोशिश की थी तो मैंने मुर्शिद साहब को आवाज दे दी। तो मुर्शिद साहब ने उनको मार मार दी कहीं, तो ये वही टाइम था 6 बजे का। तो उस वजह से मेरे ऊपर भी वो कैफियत जो मुर्शिद साहब पढ़ते वो ही थी तारी, वो मुझ पर भी हो गई। तो ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि मुर्शिद पर जो रूहानी कैफियत पास का तारीफ होती हैं वो उनके करीबी मुरीदों पर आ जाती है। अल्लाह अगला सवाल वो है जो हर हफ्ते कमोबेश 500-600 आदमियों को जवाब देता हूं मैं। अगर मुर्शिद की बताई हुई पढ़ाई में मुरीद से नागुजीर वजूहात की बिना पर कमी बेशी या नागा होने लगे तो क्या मुरीद को उसका जिक्र मुर्शिद के सामने करना चाहिए या खामोशी से मुर्शिद की हदायत का इंतजार करना चाहिए। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं हर हफ्ते तकरीबन 500-600 आदमियों को देता हूं। जब किसी को पढ़ाई बताई जाती तो पहला सवाल उसका जो आता है अगर कभी नागा हो जाए तो अगर आगे पीछे हो जाए टाइम तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जब हम मुलाजमत पर जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान कभी हमने ये नहीं कहा कि जनाब अगर मैं 9 बजे की बजाय 10 बजे आ जाऊं कभी और अगर हफ्ते में 1-2 बार छुट्टी कर लूं, उस वक्त नहीं कहते। डॉक्टर के पास जाते हैं दवा देता है हम उससे कभी नहीं कहते कि जी अगर दवा के टाइमिंग में आगे पीछे मैं कर लूं। इस वक्त तो मुझे जाना होता है जी मैं फिल्म देखने जाता हूं तो मैं दवा जो है 3 घंटे के बाद खा लूं। रब के जिक्र के बारे ही में ये सवाल अक्सर होता है। भाई अगर रब को पुकारने का शौक सच्चा है तो इंसान अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर देता है, अपने अजीज तरीन चीज को दूर कर देता है उस वक्त और राइट ऑन डॉट जिक्र शुरू कर देता है। नागा हो क्यों और वक्त में कमी बेशी क्यों हो? ये तो बड़ी पाबंदी करना पड़ती है। यही मैंने किसी मौके पर यह अर्ज किया था जिक्र टाइम की पाबंदी का हो रहा था तो मेरे मुर्शिद साहब के बुला बड़े शाह साहब ने फरमाया कि एक बार मुर्शिद ने मुझे एक पढ़ाई दी जो रात को 11 बजे मुझे शुरू करना होती थी लेकिन लोग आके बैठ जाते थे गपशप मारते थे तो टाइम की पाबंदी मुझसे हो नहीं सकती थी। तो बिलाखिर मैंने उसका हल ये निकाला कि गुजर खान में उस वक्त एक ही सिनेमा होता था वहां एक फिल्म चल रही थी 11:15 बजे एक मखसूस सीन आता था तो मैं जाके बैठा रहता था टिकट खरीद के वहां सिनेमा में वो सीन आता था मुझे पता चल जाता था 11:15 हो गए। मैं उठता था और आके वजू करके यूं ठीक 11 बजे पढ़ाई शुरू कर देता था। तो शौक इसका नाम है। जब आप अल्लाह को पुकारते हैं तो शैतान तो हर तरीके से आपको वहां से हटाता है और तो और उसको वो आपको बहुत सी चीजें दिखाने लगता है ताकि आप उसमें महव हो जाएं और जिक्र इलाही से आपका ध्यान हटे। जरा रुकेगा तो नहीं हटेगा भटकेगा तो वो इसी में खुश होता है कि लीजिए मैंने एक आदमी को जो रब की याद में महव था उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया मैंने। तो मुर्शिद जो वाकई मुर्शिद हैं वो फिर डंडे मारते हैं। मैं जुमे की नमाज के बाद और चीजें देखता था तो समझ आ जाती थी कि फलां देखा मैंने ये फलां देखा। तो हर जुमे को मैं नमाज के बाद दुआ मांगता था हाथ उठाता था इमाम साहब दुआ मांग रहे होते थे मैं भी हाथ उठाए हुए होता था तो दुराने दुआ मैं एक मखसूस चीज देखता था जो मेरी समझ में आती नहीं थी कि ये है कहां और क्या है। बहुत अरसा देखा मैंने 1-2 साल तक बिलाखिर जब्त खत्म हुआ एक बार तो मैंने नोट किया कि मस्जिद से वापसी पर मुर्शिद साहब बड़े खुशगवार मूड में हैं तो मैंने उनसे कहा कि हजूर मैं पिछले दो साल से जब दुआ मांगता हूं मैं कि तू ये चीज देखता हूं मैं, तो मेरा ख्याल था कि मूड बड़ा खुशगवार है, जवाब मिल जाएगा। वो एकदम से चलते चलते रुके और मेरी तरफ देख के कहने लगे कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, और मैं ये चाहता था कि आगे कुछ ना कहें, तो मैंने फौरन ही उनसे माजरत कर ली। ये शाह साहब में एक बड़ी चीज थी कि अगर सॉरी कह दें तो फिर दोबारा कुछ कहते नहीं थे, तो मैंने फौरन माजरत की। बात यह है कि बाद में चीजें समझ आई कि वो मुझे ये चाहते थे कि ये सिलसिले मेरे रुकने ना पाए, मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। तो यूं वो मुझे मना करते थे कि मेरे साथ जिक्र मत करो कि क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, इस पर खुद गौर करो, गौर करने से नतीजे पे पहुंचोगे वो सही होगा, तो सीखोगे बहुत कुछ। मुर्शिद के साथ अगर मुर्शिद को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उसने आपको एक पढ़ने को कुछ दे दिया, तो हर तीसरे दिन आप आ रहे हैं कि जी आज आधा घंटा में लेट हो गया, आज आधा घंटा में जल्दी पढ़ ली मैंने, आज नागा हो गया, तो मुर्शिद तो फिर मुर्शिद है। अगर उसमें तहम्मुल है, बर्दाश्त है, बुर्दबारी है, तो दो चार छह बार आपकी बात सुन के खामोश हो जाएगा, जवाब नहीं देगा, और उसके बाद वो भी फट पड़ेगा, डांट पड़ जाएगी कि क्या मैंने गलती की तुम्हें ये देखे, मत पढ़ो, मुझ पर एहसान करते हो। और अगर जलाली है तो पहली बार कहने ही में ऐसी सुनने को मिलेंगी कि इंसान आइंदा कान को हाथ लगा लेता कि मैंने नहीं पूछना दोबारा। तो मुर्शिद ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी जब आपको उसने पढ़ने को दे दिया, अब आपकी अपनी बात है, आपकी अपनी मेहनत है कि आगे बढ़ते चले जाए, उस पर मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। ये भी मुर्शिद नहीं कभी करेगा कि वो आपको ये सिखाए कि नहीं आपको ये करना है ये नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना। वो तो हुआ किसी वक्त कोई चीज आपने उसके सामने की तो वो उसे कह दिया कि मैं ये मत किया करो। जैसे मुझे एक जमाने में आदत थी कि हैरत का इजहार करने के ओ माय गॉड, तो साथ माथे पे हाथ हम सभी मारते हैं, वो मैंने अपने मुर्शिद साहब की मौजूदगी में कहीं माथे पे हाथ मार, तो एकदम से उन्होंने कहा कि आइंदा ये हाथ न मारना माथे पे, इससे रिस्क में कमी आ जाती है। विस्तरा सीख गया, लेकिन वो आपको बैठ के क्लासेस नहीं आपकी लेगा ये सिखाने के लिए कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप यूं ना करें यूं करें, वो क्लासरूम होल्ड नहीं करता कभी। जी जी असल में कल कब्रिस्तान में जो बात हो रही थी मैं यही कह रहा था कि हमें इस पर नजर रखनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरी तरह अमल करते हैं या नहीं करते हैं, या उसे जुज़वी तौर पर मान रहे हैं जुज़वी तौर पर नहीं मान रहे, जुज़वी तौर पर फॉलो करते हैं जुज़वी तौर पर फॉलो नहीं करते हैं। तो जब हम अल्लाह के अहकामात पर कुली तौर पर अमल करेंगे और सुन्नत को फॉलो करेंगे, तो सुन्नत के फॉलो करने का लामुहाला एक नतीजा ये निकलता है कि हमारे रवैये दूसरों के लिए बहुत आला हो जाते हैं। ये सिर्फ फ्राइज तक हम महदूद नहीं रहते कि मेरा ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है। हम फ्राइज से कहीं आगे जाकर अपने फ्राइज पूरे कर रही होती हैं। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत यही है। ज्यादा दूर नहीं हम जाते, एक रोजमर्रा का प्रॉब्लम जो हमें पेश आता है, कोई हमें बुरा भला कह दे सड़क पर चलते हुए, तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि बड़ी तलखी से उससे हम पूछते हैं कि क्या है, और ये तो क्या है मैंने उर्दू में कह दिया, तो मैं भी आपकी तरह अल्लाह के फजल करम से पंजाबी हूं और लाहौरिया हूं, तो बात ये होगी कि ओए, ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत तो ये है कि माफ कीजिएगा भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जब आपने रोका है मुझे, तो वह आपसे बात करता है तो बजाय उससे झगड़ा करने के, अच्छा भाई मैं माफी चाहता हूं, माफ कर देना मुझे, अस्सलाम वालेकुम। एक मामूली सा मैंने रवैया आपसे अर्ज किया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये रवैया हमने अपना लिया तो हमारी जिंदगी में खुशी कितनी आ जाएगी, लोग हमसे आगे निकलने की कोशिश में होते हैं जब हम सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, हम उलझते हैं, सुलगते हैं अंदर से, जेरे लब बुरा भला भी दूसरों को कहते हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि सुबह 7 बजे दफ्तर से के लिए आप निकले, तो 1.25 घंटे में जब आप दफ्तर पहुंचे तो कोई 20 आदमियों पर आपको गुस्सा आया, आपने दांत पीसे, उनको जेरे लब बुरा भला कहा, उनके बड़ी वो बैड लुक्स दी, तो जब तक हम दफ्तर पहुंचेंगे हमारा मूड ऐसा ऑफ हुआ होता है, दोबारा से प्रॉपर मूड में आते आते देर लग जाती है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम ये रवैया अपना लें कि चलिए आप चलिए, कितने सेकंड का फर्क पड़ेगा, तो 1.25 घंटे के सफर में अगर हम काउंट करेंगे कि हमने अपना हक दूसरों के लिए छोड़ दिया, और अगर किसी ने गलती कर ली तो दिल में ये सोचा कि मुझसे भी तो गलती हो जाती, उससे भी तो क्या हुआ, तो वो अगर सॉरी भी करे तो आगे से स्माइल करके परफेक्टली फाइन डोंट वरी मुस्कुरा के उसको वेव करके चल दिए, तो जब दफ्तर पहुंचेंगे तो कितने खुश मूड में होंगे, कितना खुशगवार मूड होगा हमारा। ये है सुन्नत की बरकत। तो जो जिंदगी के हमारे रवैये हैं, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने कोट की इसलिए कि रोज सुबह से शाम तक हमें वास्ता पड़ता है उससे। तो अगर जिंदगी में जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिले शिकवे शिकायत से मना फरमाया, तो अगर हम अपने अजीज रिश्तेदारों से गिले शिकवे बंद कर दें, अगर कोई घर में हमारे यहां मौत हो गई उस पर कोई रिश्तेदार नहीं आया किसी वजह से, फॉर सम रीजन, तो बजाय गिले शिकवे करने के मैं तो इससे नाराज हूं कि ये फलां घर में मौत हुई थी वो तो आया नहीं था, तो अगर हम अपने आप को समझा लें कि वो इंसान है कहीं मसरूफ हो गया होगा, और अगर ज्यादा ही अंदर खोलता है बंदा तो अपने आप को ये समझा दे कि मैं क्यों इतना तलखी का शिकार हो रहा हूं, क्या उसके आ जाने से मरने वाला जिंदा हो जाता, उसके आने न आने से वर्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं क्यों नाराज हो रहा हूं उससे, उसकी मजबूरी समझ के उसे माफ कर दूं, गिला शिकवा खत्म हो गया। ये सुन्नत की बरकात है। तो हमारे जो रवैये हैं, अगर हमने अपने रवैयों को सुन्नत के मातहत कर लिया तो जिंदगी वाकई दुनिया में ही जन्नत बन जाती है, कहीं कोई गम रहता ही नहीं, कोई फिक्र या कोई परेशानी रहती ही नहीं है, कोई गम होता ही नहीं, इसलिए कि हर एक को वैसी माफ कर दिया। तो इसको हम किताब की दुनिया में कम से कम मैं ये नाम दे देता हूं मैं लोगों से ये कहता हूं, दूसरों को एक्सेप्ट कर लीजिए एज दे आर। झमेले खत्म हो जाएंगे, कोई गम रहता ही नहीं जिंदगी में।